सुबह निक की आँख खुली। उठते ही उसने प्रियल को देखा, मगर वो उसे कहीं नहीं दिखी। सभी कमरों को देखने के बाद वो आखिर में हॉल में पहुंचा। वहां उसे एक चादर और तकिया दिखा, जिसे देखते ही वो समझ गया कि वो रात को यहां सोई थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे की जाँच की। दरवाजा खुला हुआ था। ये देखते ही वो समझ गया कि प्रियल यहां से जा चुकी है। उसने खुद से कहा, मैंने रात को उसे सुबह बात करने के लिए कहा था, शायद इसीलिए वो निकल गई। फिर वो बोला, मैं भी देखता हूँ मिस शर्मा कब तक छुपोगी मुझसे। तुम्हें मुझे मेरे सवालों का जवाब तो देना ही होगा। टेनिस सेंटर में प्रियल अपनी क्लासेस अटेंड कर रही थी। आफ्टरनून में निक टेनिस सेंटर के ऑफिस में गया। वहां पर डायरेक्टर आए हुए थे। रॉन और जिनी भी वहीं पर मौजूद थे। सब आपस में टेनिस सेंटर के परफॉर्मेंस पर डिस्कस कर रहे थे। तभी निक आया और सभी को देखकर दरवाजे से बोला, कैन आई कम इन सर। मिस्टर पॉटर ने उसकी तरफ देखा और बोले, कितनी बार कहा है यार, अकेले में सर मत बुलाया करो। तुम हमारे बेटे जैसे हो तो वैसे ही रहा करो। निक ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रखी और कहा, मैं कोशिश करता हूँ पर मुझसे हो नहीं पाता। मुझे प्रोफेशनल तरीके से रहना ज़्यादा पसंद है। इसके बाद वो बोला, अच्छा मुझे यहाँ टेनिस वाले स्टूडेंट्स की क्लास लेनी थी। मुझे बस परमिशन चाहिए थी ताकि मैं उनके लिए स्पेशल लेक्चर या उनकी कोई क्लास ले पाऊँ। उसने ये कहकर जिनी की तरफ देखा। रॉन निक की तरफ होते हुए बोला, पर तुम इंटर्न्स और उससे नीचे के स्टूडेंट्स की क्लासेस नहीं ले सकते। टेनिस सेंटर वाले स्टूडेंट्स तुम्हारी अथॉरिटी में नहीं आते। तभी मिस्टर पॉटर बोले, कितनी बार कहा है निक, हमसे परमिशन लेने मत आया करो। तुम्हारा जो मन करे वो किया करो। जिनी से भी मत पूछा करो, इसे चीज़ों की ज़्यादा समझ है या तुम्हें। जिनी मिस्टर पॉटर को घूर कर देखने लगी। इस पर मिस्टर पॉटर हंस दिए। वो जिनी की बुराई नहीं कर रहे थे, बल्कि निक की ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। वहीं मिस्टर डिसेना बोले, अरे सब अपना ही है, जो करना है करो। जिनी ने तभी तीखे तेवर दिखाए और कहा, अरे सब अपना ही है तो हम भी परमिशन दे दीजिए ना कुछ भी करने के लिए। हम तो आप मुंह पर ही मना कर देते हैं, हम भी तो। आगे की बात रॉन ने पूरी की, हम भी आपके बच्चे हैं डैड, भूल जाते हो आप। बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मिस्टर पॉटर दोनों से बोले, देखो ये घर नहीं है जो दोनों ने डैड डैड लगा रखा है। वी आर इन ऑफिस सो कॉल अस सर। पता नहीं तुम लोगों को ये बात कब समझ में आएगी। जिनी बोली, अरे अभी तो आपने बोला कि सर मत बुलाओ अकेले में। मिस्टर डिसेना ने कहा, वो निक को बोला है, तुम दोनों को नहीं। तुम दोनों को काफ़ी कुछ सीखना है तो तुम दोनों के लिए है, कोई ढील नहीं। थैंक्स डैडीज, निक ने कहा और एक फ़ाइल उठाकर बाहर जाने की तैयारी करने लगा। जिनी ने कहा, निक के टाइम आपके रूल्स अलग हो जाते हैं। फिर उसने पूछने वाले अंदाज में पूछा, हम आप ही के बच्चे हैं या किसी रोड वगैरह से उठाया था। निक ने दरवाजे से जाता हुआ बोला, जिनी तुझे रोड पर से नहीं, चर्च की सीढ़ियों पर से उठाया था। जिनी उसे जीप दिखाते हुए बोली, और तुम्हें कचरे के डिब्बे से। मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है जिनी। जिनी ने अपने डैड की तरफ देखा और पूछा, डैड। मिस्टर डिसेना बोले, अरे तुम्हारा भी है। वो हंस पड़े, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट भी है हमारे पास, मगर ये पता नहीं वो कहाँ है। निक इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में आ गया। वहाँ टेनिस के लिए आए स्टूडेंट्स की फिजिकल क्लासेस हो रही थी। निक ने क्लास की तरफ जाते हुए कहा, अब कहाँ जाओगी मिस शर्मा, मुझसे बचना नामुमकिन है। वो क्लास में पहुंचा और वहां मौजूद टीचर को तुरंत फाइल पकड़ा दी। फाइल पकड़ाने के बाद वो सभी स्टूडेंट्स को बोला, अटेंशन स्टूडेंट्स, मैं यहां आप लोगों की स्पेशल क्लास लेने आया हूं। प्रियल ने लाइन में से अपना सिर निकाला और घूरकर निक को देखते हुए कहा, सबकी स्पेशल क्लास लेने आए हो या फिर मेरी। ओह नहीं, ये राक्षस, इसने बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। निक आगे की ओर चलने लगा। तुम लोग सेशन के अंत की ओर बढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब एग्जाम और फिजिकल ट्रेनिंग ही बाकी है। ऐसे में मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को आगे के लिए गाइड करूं और आप लोगों को सफलता की ओर बढ़ाऊं। वो प्रियल के पास पहुंच गया। खासकर आपको मिस, उसने प्रियल को देखते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से आपका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है। आपको इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो आगे निकला और सबको एक साथ बोला, अगर कहीं भी आपका ध्यान भटका तो आपके लिए बाहर जाने के रास्ते खुल जाएंगे। एक चक्कर पूरा लगाने के बाद वो वापस आया और सबको बोला, अपनी फिजिकल प्रैक्टिस शुरू करने के लिए अब आप सब ग्राउंड के पूरे 6 चक्कर लगाओगे। ये कहने के बाद उसने प्रियल को कहा, और मिस आपको तो 10 चक्कर लगाने हैं। प्रियल घूर कर देखने लगी, मगर वो इतना ही बोली कि निक ने इसे बीच में ही रोक दिया। 11, मैं इतने चक्कर। 12, ये गलत बात है सर। 13, जैसे जैसे प्रियल बोलने की कोशिश कर रही थी वैसे वैसे निक उसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्करों की संख्या बढ़ाता जा रहा था। प्रियल ने इसके बाद बोलने की कोशिश नहीं की और चुपचाप हाँ में सिर हिलाकर इसके लिए मान गई। जल्द ही सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड का चक्कर लगाने लगे, साथ में प्रियल भी। निक चक्कर लगाते हुए उसे देखने लगा। प्रियल मन ही मन बोली, ये तो मेरी अच्छी खासी बड़ी बजा रहा है। प्रियल गई बेटा तू तो आज, ये सोचकर वो अपने बचने का बहाना ढूंढने लगी। वहीं निक एक बार के लिए ऑफिस की तरफ चला गया। तभी सुधा गिर गई, उसे चोट लग गई। प्रियल उसके पास पहुंची और उसे संभाला। ओ नहीं, तुम्हें तो चोट लग गई है। हाँ लेकिन नॉर्मल है, हो जाएगी सही। प्रियल को बचाने के लिए बहाना मिल गया। वो चोट का बहाना बनाकर आसानी से यहाँ से निकल सकती थी। उसने कहा, अरे ऐसे कैसे नॉर्मल है, कोई भी चोट नॉर्मल नहीं होती। तुम्हें नहीं पता चोट से खराब हो जाता है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। मगर ये तो हॉस्पिटल वाली चोट है ही नहीं, सुधा बोली। वो प्रियल को हैरानी से देख रही थी।
चुप करो तुम, प्रियल बोली और उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल की ओर ले गई। निक ऑफिस से बाहर आया तो उसे प्रियल और सुधा दिखाई दी, जहां सुधा लंगड़ाकर चल रही थी। इतने में दोनों टेनिस सेंटर की गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। निक को पता लग गया था कि वो दोनों हॉस्पिटल की ओर गए हैं। ये देखकर वो भी अपनी गाड़ी की तरफ बैठा और उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल की ओर निकल गया। सुधा और प्रियल इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर नील सुधा का ट्रीटमेंट कर रहे थे। आलिया को जब पता चला कि वो दोनों यहाँ हैं तो वो भी उनके पास आ गई। सुधा डॉक्टर नील के पास थी जबकि आलिया और प्रियल गेट के पास खड़े थे। निक इंस्टीट्यूट में आने के बाद तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा और उनके पीछे कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। आलिया ने कुछ देर चुप रहने के बाद प्रियल से पूछा, कैप्टन निक से तुम्हारी बात हुई? मुझे पिछले कुछ दिनों से तुम दोनों एक साथ नहीं दिखे, सब सही तो है ना? प्रियल का ध्यान उसकी बातों पर कम, सामने के डॉक्टर पर ज्यादा था। प्रियल डॉक्टर को देखते हुए बोली, उन्हें छोड़ना यार, डॉक्टर को देख, हैंडसम है ना, ये इंस्टीट्यूट में सब मुझे स्मार्ट स्मार्ट ही तो दिखते हैं। पता नहीं, प्रियल ने कहा तो आलिया भी डॉक्टर की तरफ देखने लगी। उसने डॉक्टर को देखते हुए कहा, हाँ यार ये डॉक्टर तो बहुत हॉट है, मैंने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रियल ने अचानक उदास सा चेहरा बनाया, हॉट तो है पर सिर्फ 80%, ये उतना हॉट नहीं है जितना अपना निक है। निक को उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। उसने कदम बढ़ाए और अंदर आते हुए जोर से कहा, डॉक्टर नील आपको 20% इम्प्रूवमेंट और करना पड़ेगा, तभी शायद मिस शर्मा आपको 100% का सर्टिफिकेट दे दे, वरना ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम का है। प्रियल ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। ओ माय गॉड, इन्होंने सब सुन लिया हमारी बात, मैं अब क्या करूंगी? आलिया बोली, जरूरत थी डॉक्टर को हॉट बोलने की, शुरुआत तूने की थी।
डॉक्टर नील हंसते हुए अपने केबिन से चले गए। इतने में जैन भी वहां आ गया। जैन आते ही आलिया से बोला, आलू तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए। सुधा की तबीयत खराब हो गई थी, बस उसी के लिए यहाँ हूँ, फिर उसने कहा, और तुम मुझे आलू बुलाना बंद करो, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। जैन हंसते हुए बोला, तुम्हारी फ्रेंड्स भी तुम्हें आलू ही बुलाती हैं, मैं भी तुम्हें आलू ही बुलाऊंगा। आलिया चिढ़ी, मेरी फ्रेंड्स तुम्हें टमाटर बुलाती हैं, मैं तुम्हें टमाटर बोलूँ क्या? शायद ये सही है, मैं भी तुम्हें अब से तुम टमाटर बुला लिया करूंगी। जैन हैरान हुआ, क्या टमाटर? माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। निक ने माहौल में शामिल होते हुए कहा, कौन बुलाता है मेरे भाई को टमाटर, उसकी खैर नहीं। आलिया और प्रियल ने एक दूसरे की तरफ उंगली कर दी। जैन और निक दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। निक ने गहरी सांस ली और प्रियल से कहा, छोड़ो ये सब, आओ मिस शर्मा, हम दोनों साथ में इवनिंग वॉक पर चलते हैं। प्रियल मन ही मन बोली, लो आ गई मेरी शामत। फिर उसने कहा, पर सर अभी तो शाम होने में वक्त है, हम वक्त से पहले ही चलते हैं मिस शर्मा आज। प्रियल बचने के बहाने ढूंढने लगी, नहीं सर आजकल नहीं जाती मैं इवनिंग वॉक पर, तो जाना कैंसिल। निक आगे आया और उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, पर आज तो चलना पड़ेगा, आज तुम्हारे बचने की कोई चांस नहीं। निक उसका हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर नील के केबिन में ले गया। आलिया बाय बाय करते हुए बोली, मैं तेरे लिए दुआ करूंगी मेरी प्यारी दोस्त। निक और प्रियल के डॉक्टर नील के केबिन में जाते ही डॉक्टर नील केबिन में आए। उन्होंने दोनों को देखा तो दरवाजे से ही हंसते हुए बोले, मैं बाहर ही रहता हूँ एक बार, निक ने बिना डॉक्टर नील की तरफ देखे कहा। हाँ और दरवाज़ा भी बंद करते हुए जाइएगा। वो प्रियल की आंखों में आंख डालकर देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा तो नहीं था, मगर प्रियल को इस अंदाज में उसकी शक्ल देखकर ही डर लग रहा था। प्रियल सोचते हुए बोली, एक तो बार बार इतने करीब आ जाते हैं कि मेरी धड़कनें ये संभाले नहीं संभलती, दिल बाहर निकलने को तैयार हो जाता है। फिर उसने मन ही मन कहा, पता नहीं क्या करूंगी अब। और आगे की लाइन उसने ऊपर की तरफ देखते हुए मुंह से बोली, बचा लो मुझे भगवान जी। निक ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, आप कितनी भी प्रेयर कर लीजिए, अब आपको कोई नहीं बचाने वाला। प्रियल बोली, सॉरी। निक ने गुस्सा दिखाया और कहा, आप जॉब कर रही थी वो ठीक है, वो आपका पर्सनल मैटर है, आपने वेट्रेस की जॉब चुनी आपकी मर्जी, आपने मुझे नहीं बताया वो भी आपकी खुद की चॉइस थी, मुझे झूठ बोलकर जाती थी वो भी आपकी चॉइस थी, उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन, प्रियल बोली, अब क्या बचा है, सब कुछ तो इसमें आ गया। निक प्रियल का हाथ पकड़कर उसे दीवार की तरफ ले गया। प्रियल का दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। निक को अपने इतने करीब देखकर प्रियल ने अपनी नजरें नीचे झुका ली, उसका शरीर भी ठंडा पड़ गया। निक ने कहा, लेकिन ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे डिस्कस करना सही नहीं समझा, पिछले 15 दिनों से तुम उसे जी भरकर नज़रअंदाज करती रहीं, फेस टू फेस बात करना तो दूर की बात, मैसेज या कॉल करके भी बात नहीं की, जाने से पहले तुम कहकर गई थीं कि हम दोस्त हैं, क्या ऐसे दोस्त हैं? जब तुमने मुझे दोस्त बना लिया था तो तुमने उस दोस्ती के नाते भी मुझसे एक बार ये सब नहीं पूछा, बताओ। प्रियल का चेहरा रोने वाला हो गया। मैं, मुझे माफ़ कर दीजिए इसके लिए, मैं बताना चाहती थी मगर मुझे ठीक नहीं लगा, अगर मैं अपने पैसों की तंगी के बारे में आपको बताती तो मुझे पता था आप मेरी मदद कर दोगे, मगर यहाँ मैं आप पर एक बोझ की तरह हो जाती, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी की मदद लेना, मैं डायरेक्ट तुम्हारी मदद नहीं करता, कोई और तरीका ढूंढ लेता, वैसे ही जैसे आप ढूंढा है, अभी तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तुम मेरे होटल में जॉब देखकर, पहले भी मैं ऐसा ही कुछ कर लेता, काम का काम हो जाता और तुम्हारी मदद भी हो जाती, मेरे दिमाग में नहीं आया ये। निक ने उसके सर पर उंगली रखी और कहा, तो अपने छोटे से दिमाग में लेकर आया करो ये सब बात,
इधर उधर की बात तो बहुत आ जाती है तुम्हारे दिमाग में, डॉक्टर हॉट है ये तक भी तुम्हारे दिमाग में आ जाता है, प्रियल बीच में ही बोली, सिर्फ 80%। हाँ जो भी, तुम्हारे दिमाग में बात तो आती है ना, निक मन ही मन हंसने को कर रहा था, वो भी तब जब वो गुस्से में था। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, प्रियल ने मासूमियत से कहा। करना तो दूर की बात, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। निक ने वहां पड़ा स्टेथोस्कोप उठाकर प्रियल के गले में डाल दिया, वरना ऐसा चेकअप करूंगा जिंदगी भर याद रखोगी। तभी उसने स्टेथोस्कोप निकाला और फेंक दिया। इसकी बस यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा दिल इतना जोर से धड़क रहा है कि इसके बिना भी सब कुछ सुनाई दे रहा है, प्रियल बोली। क्या? निक ने कहा। हाँ, अरे मैं क्या करूं, दिल की धड़कनों पर कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है। प्रियल अपनी जगह से हटी और थोड़ा दूर हो गई। आप ऐसे पास आकर चिपकते हो तो ये ऑटोमेटिक फट जाती है, प्रियल ने एकदम से बोल दिया और फिर आग कसकर बंद कर ली। हाँ तो, निक भी कुछ बोलने वाला था मगर वो भी यहीं चुप हो गया। उसने इधर उधर देखा और फिर दोबारा नॉर्मल होते हुए हल्के गुस्से में कहा, सब बात हो गई है तो तुम्हारे परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं। डॉक्टर 80% हॉट है पर तुम्हारा परफॉर्मेंस बेड़ा गर्क कर रहा है। क्या? प्रियल ने क्या को लंबा खींचते हुए कहा। मैंने तो अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दिया था। जी नहीं, मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हारे मार्क्स चेक किए थे, तुम बहुत खराब कर रही हो, शायद कुछ दिनों से पढ़ाई पर ध्यान ना देने की वजह से हो गया होगा। हाँ, इसीलिए इसमें थोड़ा सुधार करो, मैं अब से करूंगी, मैं अब जी भर कर मेहनत करूंगी, पहाड़ तोड़ कर मेहनत करूंगी। प्रियल ओवर एक्टिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था। निक को हंसी आने लगी। निक ने कहा, देखो प्रियल, मैं डांटना नहीं चाहता तुम्हें, बस इतना चाहता हूँ तुम्हारा परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, वरना तुम्हें इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलेगा, और मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा तुम्हारा एडमिशन ना हो, और मैंने बाकी चीज जो तुमने कही उसका ध्यान रखना, अगर दोस्त समझती हो ना तो अच्छे से समझा, ये नहीं कि बस फॉर्मेलिटी। बिल्कुल रखूंगी, प्रियल ने अच्छे बच्चों की तरह हाँ कर दी। फिर उसने अपने चेहरे पर टेंशन दिखाते हुए कहा, पर सर मुझे पढ़ाई का समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं सर, कॉन्सेप्ट सर के ऊपर से जाते हैं। निक कुछ सोचने लगा। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, अपनी जॉब के बाद मुझसे मिलना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ट्रेनिंग तुम सेंटर में कर लोगी और पढ़ाई लिखाई वाला काम मैं देख लूंगा, और हाँ तुम्हारे जॉब का टाइम भी शाम को 6 से 8 बजे तक है, बाकी के घंटों में तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। ठीक है सर, प्रियल बोली। फिर उसने पूछा, पर आपके पास इतना टाइम, मतलब पढ़ाने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा? मैं देख लूंगा, थैंक यू सो मच सर। फिर वो धीरे से बोली, अच्छा हुआ आज ज्यादा डांटा नहीं, काफी फ्रेंडली बिहेव किया। निक ने सिर हिलाया और कहा, पता नहीं मिस शर्मा आपको ये गलतफहमी क्यों है कि आप धीरे से बोलती हैं। प्रियल ने आवाज ऊंची निकाली और फटाफट बोली, क्लास का टाइम हो रहा है सर, वहां नहीं ली तो यहाँ ऑनलाइन वाली लेनी है, और कहकर भाग गई। प्रियल भाग गई तो निक ने सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, मैं 100% आउट हूँ। तो तुम प्रियल 200% क्यूट हो, बाकी हॉट तो हो ही, ये कहकर वो भी चला गया।